તારીખ 3/2/1989 પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 91 અને 92 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 80.
धर्म क्या चीज है, कैसे होता है, उसके विषय में यहां स्पष्टता चलता है. ये कहा कि यथार्थ पहचान होने से अतीन्द्रिय आनंद युक्त निर्मल अंश प्रकट होता है, उसको धर्म कहते हैं. धर्म है अतीन्द्रिय आनंद की अवस्था है. धर्म कोई काय क्लेश रूप परिणाम नहीं है. आत्मा की अलौकिक शांति को धर्म कहते हैं. उसको अंश कहा, निर्मल अंश ऐसा हुआ. तो इसका स्पष्टीकरण देते हैं कि अंश क्यों कहा. अनादि अनंत एक रूप चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा वो अंशी है. अनादि अनंत एक रूप आत्मा का जो दृढ़ स्वभाव है वो बड़ा अंश होने से उसको अंश कहते हैं. वो भी एक अंश है क्योंकि प्रमाण का विषय भी जो आत्मा है वास्तव में तो वो अंश है.
को मिला करके जो है
सामान्य विशेषात्मक जो पदार्थ है वो अंश है. सामान्य भी इसका अंश है, विशेष भी इसका अंश है. लेकिन यहाँ निर्मल पर्याय को अंश का और त्रिकाली एक रूप ध्रुव सामान्य दृढ़ स्वभाव को अंश का बड़ा होने से भगवान आत्मा वो अंशी है, वो धर्मी है, जिसमें ज्ञान आनंद आदि अनंत धर्म पाए जाते हैं. वैसे इसलिए वो धर्मी है. और इनमें से जो प्रकट हुई निर्मल शुद्ध अवस्था, पवित्र अवस्था, मलिनता रहित, दुख रहित, विपरीतता रहित, स्वभाव के विपरीतता रहित, ऐसी अवस्था को धर्म कहते हैं. भगवान आत्मा ऋषि है, धर्मी है और इनके आश्रित ऐसा मैं हूं, ऐसा आश्रय भाव प्रदाज्ञान चारित्र से, ऐसा आश्रय से जो निर्मलता प्रकट हुई वो अंश है, वो धर्म है. निर्मल दशा प्रकट हुई उसको अंश और धर्म कहने में
आता है.
फिर उसको विधिगत सांप्रदायिक अभिधान करने से जैन धर्म को या कुछ भी कहो, लेकिन यही धर्म है. जैन धर्म कोई संप्रदाय नहीं, कोई बाड़ा नहीं, कोई नाती जाति का ये कोई मुद्दा नहीं है. वो ये नहीं समझते कि नात जात समाज अलग चीज है. कैसे नहीं, ये हमारे समाज है,
समाज
ये अलग चीज है, धर्म कोई अलग चीज है. नात जात संप्रदाय ये सब समुगत बात है पर धर्म एक अपनी व्यक्तिगत बात है. जैसे पाप पुण्य व्यक्तिगत होता है जीव को, वैसे धर्म में जीव को व्यक्तिगत होता है, समूह रूप से किसी को धर्म नहीं होता है। इसलिए दो बात को अलग अलग अपने अपने स्थान में रखनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे में मिलाने से बहुत सी गड़बड़ी होती है। मान गए थे परसों आगरा ग्वालियर शहर में गए थे, वहां मिलते थे, क्या करेंगे, हमें समाज में रहना है इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। मान्यता तो अपनी अपनी हरेक की अपने श्रद्धा में रहती है, ये कोई बाहर की चीज नहीं। अपन क्या समझे क्या माने वो अपनी स्वतंत्र बात रहती है, इसका बंधन किसी से होता नहीं, होने का सवाल ही है। जैसे मित्राल गुरु को छोड़ करके जैनी होकर के रागी कुदेवादी को मानने लगते हैं, क्या करें, स्वतंत्र है। तो ये तो बात स्वतंत्र हो गई, अपनी अपनी मान्यता की है। हम कहते हैं कि शुद्धात्म स्वरूप के आश्रय से शुद्ध निर्मल पवित्र अवस्था होए प्रकट होए उसी को धर्म कहते हैं, और वो धर्म है, वो धर्म प्राप्त करने का तिलिंज भी अधिकारी है, कोई भी संगी प्राणी अधिकारी है, चाहे वो नरक का नारकी हो, चाहे वो देवलोक का देव हो, या संगी पंचायत भी तिलिंज हो या संगी मनुष्य है। मनुष्य में भी समय असमय दोनों होते हैं, समय है मन वाले हैं, लेकिन वो समूचन मनुष्य होते हैं, असमय भी होते हैं। वो शास्त्र का विषय दोनों अलौकिक विषय नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो धर्म है वो साधक जीव को, साधक जीव को ऐसा धर्म रूप परिणाम अंशी के आश्रय से होता है। त्रिकाली एक रूप चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा, उसको अंशी कहा, उसका आश्रय लेने से ये प्रकट होता है। साधक जीव को आश्रय अंशी का होता है, साधक जीव को आश्रय अंश का नहीं होता है। अंश स्वयं धर्म स्वरूप होने के बावजूद भी जो अंश है उसमें धर्म प्रकट होता है, पवित्र दशा अकषाय दशा होती है, उसका आश्रय धर्म को नहीं होता है, क्योंकि वो एक अंश है, यानी अपनी दृढ़ स्वभाव का ही आश्रय होता है। एक समय की शुद्ध अवस्था प्रकट हो इसका भी आश्रय नहीं होता है।
बरोबर,
ये बात मूल शास्त्र में तो बहुत अच्छी तरह है, गुरुदेव ने इस बात को बहुत प्रसिद्धि दी है। समाज प्राय इस विषय से अनभिज्ञ थे, नहीं जानते थे कि ये अंश क्या, अंशी क्या, अंश का आश्रय क्या, अंशी का आश्रय क्या, नहीं जानते थे। अंशी का आश्रय करना, अंश का आश्रय नहीं करना, धर्मी का आश्रय करना, मैंने धर्म का आश्रय नहीं करना, राग का पुण्य का तो आश्रय करने का सवाल ही पैदा नहीं होता वितराग मार्ग में, लेकिन वितराग पर्याय का भी आश्रय करने का सवाल नहीं। और जिसको वितराग पर्याय पैदा होती है उसको कभी इस अपनी वितराग पर्याय का आश्रय बताइए रहता ही नहीं, तभी उनको वितराग दशा रहते हैं। आश्रय करे या मुख्यता देवे या भजन देवे तो वितरागता नष्ट हो जाने रात की उत्पत्ति हो जाए। रात के तो उत्पत्ति क्या मिथ्यात्व की उत्पत्ति हो जाए। एक समय की पर्याय का आश्रय लेने को जाएगा आश्रय को मिलेगा मिल सकता नहीं, क्योंकि वो तो एक समय की विचलित अंग रूप परिस्थिति है, वो तो चलित हो जाता है। आश्रय लेने को जाता है गिर जाता है, क्योंकि आश्रय लेने की चीज नहीं हो, लेने के जाओगे तो गिर जाए विचार में आ जाए।
धर्म का आश्रय लेना धर्म का नहीं,
प्रसिद्ध की धर्म का भी आश्रय नहीं लेने का। वो धर्म के धर्म की पर्याय में क्या क्या होता है कि अपूर्व आनंद होता है, अपूर्व शांति होती है, स्वसंवेदन होता है, सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होता है, और सम्यक पुरुषार्थ होता है। ये सब चीज होने के बावजूद भी एक चीज का आश्रय नहीं करता था, ऐसी परिस्थिति स्पष्ट है। धर्म के विषय में ये परिस्थिति बहुत स्पष्ट है।
जेनो आश्रय लेवा माटे आप को छो एमा तो आ बधा धर्म आवी जाय छे, तो पछी एमो आश्रय थई
शक्ति रूप, ये शक्ति जिसका आश्रय लिया जाता है वो तो शक्ति और सामर्थ्य रूप स्वभाव है, व्यक्ति रूप पर्याय नहीं।
धर्मी नो आश्रय ले तो धर्म नो आश्रय थई जाय छे, नहीं एक साथे छे
नहीं होता है। देखो पड़ा साधक जीव को आश्रय अंशी का होता है अंश का नहीं, अस्ति नास्ति से स्पष्ट किया है, अनेकांत किया है कि अंशी का ही आश्रय होता है। 58 पाना 51 बोल में नीचे से साधक जीव को मैंने धर्मी जीव को चाहे सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान वाला हो, चाहे मुनि दशा हो, चाहे श्रावक दशा हो, वो सब साधक ही था। इसको आश्रय अंशी का होता है अंश का नहीं, वेदन अंश का होता है, शांति का वेदन होता है, स्वसंवेदन ज्ञान का वेदन होता है, वेदन होता है अवश्य, आश्रय नहीं होता है। मिथ्यात्व अवस्था में रागादि आकुलता का वेदन होता है पर उसको ही आश्रय कर लेता है, यही पर्याय का एकत्व है। और आश्रय यहां से बदल करके दो जगह आश्रय नहीं रहेगा, त्रिकाली एक रूप अमेचक्ष जो स्वभाव है, स्थिर स्वभाव है, नित्य स्वभाव है, उसका आश्रय लेता है। आश्रय लेने वाली अवस्था खुद है, बस ये धर्म प्रकट हो गया। धर्म के आश्रय से आश्रय लेने वाली अवस्था को धर्म प्राप्त हुआ। वो अवस्था स्वयं का आश्रय नहीं लेती कभी, पर्याय स्वयं का आश्रय नहीं लेती, पुत्रिकाली सामान्य भगवान आत्मा का आश्रय लेती, उसका वेदन अंश को वेदन अंश का होता है किंतु उसका आलंबन होता नहीं, ये आलंबन भूत विषय नहीं। धर्म स्वयं आलंबन भूत विषय नहीं, जिसका आश्रय नहीं, जिसका अवलंबन नहीं, इसलिए उसको एक न्याय से अप्रयोजन भूत कहने में आया। साधक अवस्था तो ठीक लेकिन मोक्ष अवस्था में भी मोक्ष आश्रय लेने का सवाल नहीं। ये शुरू से ये बात है, साधक को कि अभी साधक अवस्था बरतती है लेकिन मोक्ष अवस्था के मुख में भी मुझे प्रयोजन नहीं, मेरा अवलंबन का प्रयोजन तो मेरा त्रिकाली ध्रुव तत्व से ही है, उसी का ही आश्रय करने का मेरा प्रयोजन भूत अवलंबन भूत विषय है।
ने कहा
सम्यक
दर्शन हो गया तो क्या हो गया,
क्या हो गया? वो तो ऐसा कहते थे कि जिस परमात्मा को देखते हैं और जिस परमात्मा ही अपना सर्वस्वरूप स्वरूप है, फिर दूसरी चीज को देखने की आवश्यकता ही क्या है। हमारे नेत्र इस परमात्मा को देख के उतने भर जाते हैं कि फिर किसी को देखने की कोई जगह ही नहीं, इस जगह अवकाश ही नहीं कि हम किसी और को देखें। ऐसा परमात्मा कोई अद्भुत से अद्भुत आश्चर्यकारी महाचैतन्य पदार्थ है, ऐसी इनकी महानता है कि फिर परिणति इसको छोड़ करके कहीं और गए जाना नहीं चाहती। एक आश्रय लेना अर्थ है, एक आश्रय देना अर्थ है। आपको पदार्थ वेचक पर वेचक स्वरूप है, एक स्थिर भाव है, प्रभाव है, प्रकार एक पलट तो अंश है, पलट तो अंश से स्थिर भाव मात्र आ हूं छू एवी प्रतीति थी। अचलित पदार्थ में प्रतीति थी सुख शांति जैसे, चलित पदार्थ में प्रतीति थी दुख ने आकुलता उद्देश्य, बस आप सुख दिखना हिसाब किताब
की दीवार।
चलित अंश अचलित स्वभाव जो भी हिम्मत है वो उतने में है, पर पदार्थ के साथ अन्य चीज के साथ तो लेना देना ही नहीं जीव को, न कोई परमाणु न कोई दूसरा जीव, कोई लाभ का कारण कोई नुकसान का कारण, कोई राग का कारण कोई द्वेष का कारण, न सुख का कारण न दुख का कारण, जो कुछ है वो अपने में अपने निर्मल है। सब
ध्याता पोते ध्याने पोते ने ध्येय पोते तण एक ज।
हाँ वो क्या है कि ध्याता ध्यान ध्येय का विकल्प नहीं है और द्रव्य पर्याय का भी जिसमें विकल्प नहीं है, ऐसा एक शुद्धोपयोग रूप निर्विकल्प ध्यान में ध्यान ध्याता ध्येय का भेद नहीं रहता है, एक पदार्थ का तीनों अंश एक रूप सदृश होकर परिणाम रूप रह जाता है।
ध्याता पोते ध्यान रूपे पोते ने ध्येय पोते एम रहे तो
ऐसा है कि वो बात विचार दशा की नहीं, ये बात विचार दशा की
नहीं है।
जब विचार दशा की बात चलती है तो किसका ध्यान लेना, किसका अवलंबन लेना, किसका अवलंबन नहीं लेना, इसका विवेक किया जाए। निर्विकल्प अवस्था में तो कोई बात कहने की नहीं है न सोचने की, इसका वर्णन किया जाता है कि ध्याता ध्यान ध्येय सब एक हो गया, कोई विकल्प नहीं। यहां तो उल्टी बात को सुलटी कैसे करें वो पता चलता है।
बराबर
अनादि से जो भूल की उस भूल को कैसे सुधार करके धर्म की प्राप्ति हो गई, तो धर्म की प्राप्ति होने से ध्यान भी शुद्धोपयोग दशा में ध्याता ध्यान भी तीनों अभेद हो जाएगा। चलित अंग चलित ही रहता है, अचलित अचलित ही रहता है। नहीं, उसमें भाव के रूप से सदृशता आती है। एक अभेद कहने में सदृश भाव होता है, जैसा स्वभाव भाव वैसी ही अवस्था ध्यान की, जैसा ध्येय रूप अवलंबन रूप तत्व उस रूप उस भाव रूप। क्योंकि आश्रय क्या है, मैं ऐसा हूं, ऐसा तदाकार तन्मय, ऐसा परिणाम हो गया स्वरूप के साथ, तो ऐसा सदृश भाव हो गया। सदृश भाव हुआ लेकिन वो भी समय समय उत्पाद हुए उत्पाद हुए उत्पाद हुए, वो तो है ही, वो तो साधक अवस्था हो चाहे सिद्ध अवस्था हो। सिद्ध अवस्था में क्या है, सिद्ध अवस्था में जैसा द्रव्य स्वभाव है वैसी अवस्था है। पर्याय का स्वभाव अचलित होने का रहने का ही नहीं,
तो
अपने अपने स्थान में भिन्न स्वभाव स्वभाव है। पर्याय 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 कभी त्रिकाली रूप होती नहीं, त्रिकाली कभी पर्याय रूप होता ही नहीं। ये जो पदार्थ का जो बंधारण है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पदार्थ की जो व्यवस्था है, वो तो तीनों का जो है सो है, उसमें कोई फर्क नहीं। सदृश भाव रूप हो गया, भेद भाषित नहीं होता अनुभव में। भेद कहने में क्या है कि ये द्रव और ये पर्याय, ये ध्यान और ये ध्यान का विषय भूत भेद, ऐसा भेद भाषित नहीं होता अनुभव में। समझाने के तरीके अलग अलग भाषा से समझाया जाता है, बस इतनी बात, शब्द से कोई बात नहीं, वाच्य उसका इतना है, वाच्य कोई भी शब्द। क्या समझाते हैं कि वेदन अंश का होता है, अवस्था का वेदन होता है, फिर भी इस वेदन का अवलंबन नहीं होता, सुख शांति होती है फिर इसका अवलंबन नहीं होता साधक अवस्था में, उस पर वजन नहीं होता। मुझे आनंद हो गया, मुझे मुनि दशा आ गई, मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, ऐसा कोई वजन नहीं आता इसको को दर्शाने के लिए। सुगा ने कि सम्यक दर्शन हो गया तो क्या हो गया,
वजन नहीं देना
पड़ता, वजन नहीं देने का। क्योंकि जो लोग सुनने को आते थे अपने मुमुक्षु भाई, तो सम्यक दर्शन करके बहुत महिमा करते थे। सम्यक दर्शन बहुत बड़ी भारी चीज है, गुरुदेव ने बहुत महिमा उसकी समझाई अपने को, जैसे कैसे भी हमें सम्यक दर्शन
हो जाए
तो आपको हो गया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि क्या बड़ी बात है, सम्यक दर्शन हो गया तो क्या हो गया, भले ही सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि, धर्मात्मा महात्मा सत्पुरुष माने, लेकिन सम्यक दृष्टि अपने को ऐसा जानता है कि मेरी चतुर्थ गुण स्थान रूप जो अवस्था चल रही है वो पूर्ण मोक्ष रूप अवस्था के आगे बहुत अनंतमय भाग में बहुत जघन्य है, बहुत जघन्य है। और स्वरूप से मैं इतना साक्षात सिद्धपद स्वरूप और मेरी अवस्था इतनी हीन, ये बात मुझे पुसाती है। जैसे कोई अरबपति भीख मांग का बेटा भीख मांगे, शहनशाह बादशाह का बेटा भीख मांगे, तो ये बादशाह को बर्दाश्त नहीं होता। ये कैसा होता है, इतनी संपत्ति और तू लाचारी दीनता करता है, भीख मांगता है, क्या बात है। ऐसे सम्यक दृष्टि को अविरत सम्यक दृष्टि होने से उनका परिणाम विषय कषाय में जाता है, उनको बहुत दुख होता है कि ये क्या, मेरा पूर्ण शुद्ध स्वरूप परिपूर्ण सिद्ध पद और ये अवस्था में इतनी दीनता,
इतने मामूली पामर विषय में मेरा उपयोग जाता है, मेरा परिणाम जाता है, मुझे राग होता है, ये क्या बात है? उसको बहुत जोर से निषेध आता है और अपने ऐसे हीन परिणाम की उसको दुखद परिस्थिति का वेदना भी होता है। इसलिए मुनि दशा को याद करते हैं। क्या मुनि दशा? देखो कोई विषय में जाते नहीं, विषय कसाई के परिणाम ही नहीं होते, कोई स्वागत योग नहीं है, ऐसा होना चाहिए। साधकपणा ऐसा होना चाहिए जैसे मुनि दशा है, ऐसा साधकपणा होना चाहिए। इसकी भावना आती है फिर भी भजन एक पर्याय पर नहीं, मोक्ष तक के पर्याय पर भजन नहीं,
भजन नहीं,
ये विशेषता है।
निश्चय में स्वधर्म अवलंबन, निश्चय में पोते जे धर्म छे एनो आश्रय, अने बार में देव साथ देव गुरु सत्पुरुष नो अवलंबन, देव गुरु सत्पुरुष नो अवलंबन में गर्म आवाज हरी जाए छे।
वो तो अपने मूल स्वरूप का प्रकाशक होने से उस रूप उसको देखते हैं कि मेरा जो मूल स्वरूप है उसको कहने वाला प्रकाशने वाला ये देव गुरु असत पुरुष है। तो मेरा ऐसा स्वरूप को जिसने प्रकाश किया इसलिए निबंधनीय है व्यवहार से। फिर भी वो आलम्बन के विषय तो वो भी नहीं, वो भी आलम्बन के विषय नहीं होते। तो परद्रह तो परद्रह है, परद्रह तो भी स्वैद्रह होते नहीं, और ये वितरागे होने से अपना काम करने का तो सवाल नहीं। मेरा काम तो मैं ही करूंगा, मेरे पुरुषार्थ से होगा। लेकिन इनको देखने से अपना स्वरूप को अधिक स्पष्ट देखने का एक निमित्त पड़ जाते हैं, इसलिए उनको निमित्त के स्थान में बहुमान करते हैं। वो भी रागादि के काल में राग है, वहां इतना राग हटाएगा उतनी सी बात। वो भी सुबहने जी मिल गया कि गुरु की महिमा करे तो ऐसा करे कि वहां गुरु आप तो आकाश से भी महान हैं, क्या आप तो
आकाश
आकाश से भी महान है, ऐसा भी है। उसमें अनुसंधान ये है अपने भूतकाल के साथ, अनादि से मैं बहुत दुख पाया, चतुर्दशी 84 लाख योनि में बहुत दुखी हुआ संसार में, और इस शुद्धात्म स्वरूप के द्योतक प्रकाशक ये देव गुरु शास्त्र सत्पुरुष नहीं मिलते। ध्यान तो अपना खुद का गया है, मिले अनंत बार, लेकिन जब ध्यान गया तो उसको मिला ऐसा कहने में आता है। कल बेंसन ने क्या कहा, जिनवर स्वामी नहीं मिले, एक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, स्वरूप का भान नहीं किया और जिनवर स्वामी नहीं मिले, क्या बोले मिले तो अनंत बार ऐसा कहे, लेकिन पहचान नहीं किया कि ये शुद्धात्मा का स्वरूप प्रकट रूप ऐसा ही होता है जैसा जिनवर स्वामी है। जिनवर स्वामी मैंने शुद्धात्मा का प्रकट स्वरूप ऐसा मैंने कभी पहचाना नहीं। ओगे ओगे वंदन नमस्कार पूजा भक्ति तन मन धन के अर्पणता कर दी, ओगे ओगे कर दी, स्वरूप को नहीं पहचाना। एक दफे पहचान कर लिया बात दूसरी हो जाती। आलम्बन तो सदा शुद्ध अखंड एक परम पारिणामिक भाव स्वरूप निज आत्मद्रव्य का ही होता है, जिस पारिणामिक भाव में चारों प्रकार के पर्याय का अभाव है, भाव के पांच प्रकार लिए, उदयक्षणिक सूक्ष्म और क्षायिक, ये चारों उत्पाद रूप अवस्था का प्रकार है, और पांचवा श्रीकाली द्रव स्वभाव अनादि अनंत रूप परम परिणामी भाव वो द्रव स्वभाव है। आलम्बन तो सदा शुद्ध अखंड एक परम परिणामी भाव रूप निज आत्म द्रव का ही होता है, जिसमें अनंत गुण संपत्ति भरी है। ऐसा क्या होता है, सभी को आलम्बन अपनी संपत्ति का होता है और किसका होता है? संसार में जिसको संपत्ति मानी, धन धान्य मकान जेवर पैसा आबरू कीर्ति, उसको संपत्ति मानी ने, आलम्बन किसका रहता है? जो संपत्ति है उसका आलम्बन रहता है, काम हजार करता है। एक लक्षाधिपति को कोर्ट में जाना हुआ, भाई आपका गुना तो साबित होता है, आप भी इकरार करते हो प्रामाणिकता से कि साहब ये मेरी भूल हो गई है, तो मैं कम से कम दंड देता हूं, पर ज्यादा से भी ज्यादा दंड दे सकता हूं। अब आपको मैं पूछता हूं को क्या करें, बोलो। गरीबी गाते वक्त गरीबी की पूरी चेष्टा करता है, भीतर में जानता है कि पैसे तो बहुत हैं लेकिन देना नहीं है। आलम्बन हमेशा जो संपत्ति होती है उसका रहता ही है, चाहे संपत्ति का अभिमान करे प्रसंगवश प्रयोजनवश, चाहे संपत्ति को कम बतावे दरिद्र बतावे, लेकिन संपत्ति का आलम्बन हमेशा रहता है। निर्गुण की संपत्ति का ज्ञान हुआ, भान हुआ, अनुभव हुआ, तो उसका आलम्बन रहता है साधक को। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है कि आलम्बन तो सदा शुद्ध एक परम परिणामी भाव स्वरूप निज आत्मद्रव्य का ही होता है। एक दफे पहचान हो गई तो उसका ही आलम्बन आएगा, फिर दूसरे का आलम्बन लेने का सवाल नहीं। और उसका आधार से ही धर्म कहो या शांति कहो सब होता है, इसका आधार से धर्म कहो शांति कहो सुख कहो चारित्र कहो ज्ञान कहो दर्शन कहो सब उसके आधार से होता है। ऐसे जो शुरू में प्रश्न उठाया था कि धर्म क्या है, धर्म किसको कहना, और लोग कहते हैं कि हमें धर्म करना है तो वो कैसे होता है, किस विधि से होता है, कि धर्म ऐसा जो परम परिणामी भाव उसके आधार से जो आत्मा की पवित्र दशा अकषाय दशा निर्मल दशा होती है सुख शांति की दशा होती है उसको धर्म कहने में आता है। ये विधि है, ये धर्म का स्वरूप।
अंदर की बात रही, बाकी तो है कुछ। बात तो अंदर की रहे,
बात तो आत्मा के भीतर की है। आत्मा का धर्म की बात आत्मा के हो गए या दूसरे के हुए? आत्मा का धर्म क्या चावल में रहता है, किस में रहते हैं, क्या कोपरे के टुकड़े में रहता है, पूजा करते हैं ना धर्म किसमें रहते हैं, क्या हाथ में रहता है, क्या वाणी में रहता है, क्या किसमें? धर्म तो धर्म की अवस्था है बस, और धर्म के आश्रय से पैदा होती है। दूसरे पदार्थ का आश्रय लिया, उल्लंघन लिया, राग की उत्पत्ति होगी, राग को वितराग मार्ग में धर्म कहने में आता नहीं।
धर्मी को भी होता है राग,
मानते हैं कि ये धर्म नहीं है। साधक अवस्था में मिश्र धर्म है, शुद्धता और अशुद्धता मिश्र परिणाम है, सुख और दुख का मिश्र परिणाम है। तो जितनी शुद्धता है उसको धर्म मानते हैं, जितनी अशुद्धता है उसको अधर्म मानता है। धर्म नहीं है,
धर्म नहीं है बराबर।
अब उसका निषेध करके उसको अभाव करके पूर्ण मित्राल हो जाता है, पूर्ण मित्राल हुआ तो अरिंद दशा हुई, सिद्ध दशा हुई। अगर राग करने लायक होता तो सिद्ध परमात्मा भी करते, अरिंद परमात्मा भी करते,
छोड़ दिया।
शरीर रखने लायक होता अरिंद परमात्मा के शरीर तो परम उदारित हो गया, जिसमें रोग नहीं है, पर मानते थे उसकी बात, रोग नहीं है जिसमें,
रोग नहीं है
वो तो परम उदारित परमाणु हो जाते हैं, उतने तेजस्वी होते हैं, जिसके आगे सूरज चंद्र और टिमटिमान टिमटिम बताया ना दिया छोटा सा, ऐसा लगता है हमारे टमटमिया कहते हैं, छोटा दिया तो टमटम
टमटमिया,
इतना तेजस्वी होता है, ऐसा शरीर तो रखे कि नहीं रखे, इतना सुंदर इतना तेजस्वी, इसमें रोग नहीं, क्षुधा नहीं, तृषा नहीं, निंद्रा नहीं, प्रसवेद नहीं, कुछ नहीं, फटाक दोष सही, ऐसा शरीर नहीं रखने का क्या? कोई परमाणु जीव के नहीं, जीव कोई परमाणु स्वरूप नहीं, न जीव को कोई लेना है न कोई इसे देना है, परम उदारित हुआ तो अपने कारण से, रहा तो अपने कारण से, छूटा तो अपने कारण से, सिमंदर परमात्मा। अभी आगामी आने वाली चौबीस के 13वें तीर्थंकर के उदय के काल में वो सीधा पधारेंगे, वहां तक यहाँ अरिहंत अवस्था में रहेंगे, असिद्ध अवस्था कहो अरिहंत अवस्था, रखने का भाव है क्या कोई? और भगवान महावीर स्वामी के 72 साल की आयु थी, कितनी?
72
ना 1 करोड़ पूर्व की आयु से सिमंदर परमात्मा, इधर 72 साल की, दोनों तीर्थों का, दोनों का 13वां स्थान में कोई फर्क
नहीं,
समकाल में थे दोनों का 13वां स्थान, जो महावीर स्वामी की अरिहंत अवस्था थी उसी वक्त भी उनकी तो थी, ये तो 2500 साल पहले दोनों की अवस्था सर। पंचम काल में 3.5 महीने करीब करीब बाकी रह गया, 3 महीना 20 दिवस करीब, वो उसको बता रहे चिदालय में पहुंचे, तो आयुष का काल है, शरीर के साथ संबंध रहना नहीं रहना वो आयुष कर्म पूर्व कर्म का परिणाम है, वर्तमान में अपने को कोई संबंध नहीं है उसका, माने तो भी नहीं है, नहीं माने तो भी नहीं, ये अरिंद भगवान का प्रत्यक्ष दृष्टांत है, एक तीर्थंकर तो 12 साल तो वो आदम मुनि दशा में भी और फिर अरिहंत अवस्था में, तो वहां कोई छोटा काल रहा ज्यादा काल रहा कोई पूर्व कर्म अनुसार है, शरीर का रहना नहीं रहना टिकना नहीं टिकना बस खत्म, न कोई लाभ का कारण है न कोई नुकसान का कारण है, ज्यादा काल अरिहंत अवस्था रहे और दिव्य ध्वनि की देशना चले लंबे काल तक, हरि प्रसाद जी बहुत सुनो, बहुत से जीवों को राग तो हुए नहीं हुए कि ऐसा राग गीत राग को कभी होता, ऐसा राग भी वितरागी को नहीं होता, वो तो केवल ज्ञान में सब एक समय में पता चल गया, आयु कितनी है सबों की, कोई हरक्षोभ नहीं है, कोई विकल्प नहीं है इसका, कोई
स्वभाव अत्य वर्तमान स्वभाव
स्वभाव पुरुष पर्याय मत ना પવિત્રતા પ્રગટ નથી હોતી, પવિત્રતા નો આવિર્ભાવ નથી હોતો, અકષાય દશા કષાય નો નાશ નથી હોતો.
વસ્તુ તો છે પણ એને નક્કી કરે છે
પવિત્રતા પ્રગટ થાય છે. તો જો પવિત્રતા પ્રગટ થાય છે તો પૂર્ણ પવિત્રતા એમથી પ્રગટ થતી, અધૂરી થાય છે. તો અધૂરી પવિત્રતા અને બાકીની અપવિત્રતા એને નિસ્રાંશ કહેવામાં આવે, એને નિસ્રધમ
કહેવાય.
અકષાય ભાવ અને સકષાય ભાવ બંનેના મિશ્ર ભાવને નિસ્રધમ કહેવામાં આવે. મિથ્યાત્વ અવસ્થામાં પવિત્રતા કષાયનો અભાવ થયો નથી. તારે ચાર કષાય પડ્યા છે, અનંતાનંદી પ્રત્યાખ્યાની અપ્રત્યાખ્યાની સંજલ સમીર દર્શન થયું ત્યાં અનંતાનંદી ગયો. શરૂઆતમાં ચોથો ગુણ સ્થાનના અંતમાં એને અપ્રત્યાખ્યાન માની જાય, પછી પાંચમા ગુણ સ્થાનમાં પ્રત્યાખ્યાન માની જાય, અંતમાં છઠ્ઠે સાતમીમાં એકલો સંજલ અંતે. તો જેટલો કષાય ગયો એટલી પવિત્રતા પ્રગટ, મલિનતા ગઈ. મિથ્યાત્વ અવસ્થામાં મલિનતા પૂરી છે, કષાયની મલિનતા પૂરી છે, મિથ્યાત્વની મલિનતા પૂરી છે, એટલે એને મિશ્ર ધર્મ ત્યાં નથી કહેતા.
ત્યાં નથી કહેતા પણ છે પરિસ્થિતિ
મુખ્યતા જેને ખબર જ નથી મુખ્યતા કરે ક્યાંથી. મિથ્યાત્વ અવસ્થા એટલે શું? કે પોતાના સ્વરૂપને ભૂલેલો, પછી મુખ્યતા ગમતાનો સવાલ જ નથી. એને તો સર્વસ્વ છે એ શરીર છે, સર્વસ્વ છે એ રાગ છે, સર્વસ્વ છે એ બહારની સામગ્રી છે, સંયોગની, એને તો એ જ સર્વસ્વ છે. એટલે ઓલી ચીજ એ હોવા છતાં એને માટે તો નહીં હોવા બરાબર છે. હા, મુખ્યતા તો જયારે પોતાને ભાન થાય ત્યારે કરે, ભાન થવું એ મોટી વાત છે. એટલે એ પહેલા મિશ્ર દશા નથી, અભાન દશામાં મિશ્ર દશા નથી. એકાંગમાં બાણું પાત્રતા કામશે, પાત્ર જીવ કે પરિણામ કે લક્ષણ કેસે હોતે હૈ, પાત્ર મેને સમ્યક દર્શન કી પૂર્વ ભૂમિકા, ધર્મ પ્રાપ્તિ કી પૂર્વ યથાર્થ ભૂમિકા. જીસ પાત્ર મેં સમ્યક દર્શન રૂપ વસ્તુ રહે સકતી હૈ, ધર્મ રૂપ વસ્તુ રહે સકતી હૈ, એસે પાત્ર મેં ઘી તેલ દૂધ રખતે કે નહીં રખતે, એસે સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાન આત્મા કી શાંતિ કિસ પૂર્વ ભૂમિકા હોતી હૈ તબ આતી હૈ, એસી સ્થિતિ કો પાત્રતા કહેતે હૈ. જૈસે અનાજ પકાતે હૈ તો જમીન કો પાત્ર કરની પડતી હૈ, પાત્ર કરીને મને ખેર કે ઓછી કર દેતે હૈ, ખાદ ડાલતે હૈ, ઉસમેં સબ પ્રકાર કી વ્યવસ્થા ઠીક કર દેતે હૈ, ફિર ઉસમેં બીજ બોયા જાતા હૈ. એસી જો પૂર્વ ભૂમિકા હૈ, ધર્મ કે પહેલે કી ભૂમિકા હૈ, ઉસકો પાત્રતા કહેતે હૈ.
બહુ સરસ.
ઓર સત્પુરુષો ને યે કહા કે બિના પાત્રતા કિસી કો ધર્મ પ્રાપ્ત હોતા નહીં. क्षोभम कितना भी तगड़ा हो, ज्ञान होगा और अज्ञान नौ करोड़ तक का अध्ययन कर ले, बिना पात्रता धर्म के प्राप्ति नहीं होगी. चारित्र गुण का क्षोभम कितना भी तगड़ा हो, वीर्य गुण का क्षोभम कितना भी तगड़ा हो, छह छह महीने का उपवास कर सके कितना
6 महीना
6 महीने का कर सकते हैं, इतनी हट वाली प्रकृति होती है
तो भी धर्म नहीं होता
बिना पात्रता के।
आई देखो ना तो फिर क्यों
हाँ
चार
क्या चार उसमें वो द्रविण हो जाते हैं ना, कषाय की मंदता इतना करता है चार के सूक्ष्म भाव में होता तो उतनी मंदता कर लेते हैं कि पहचानना मुश्किल पड़े कि ये द्रविण ये है या ये भावलिंग है, पहचान करना मुश्किल पड़ जाए इतना मंद कषाय हो गए। तो गुरुदेव कहते थे कि चामड़ी उतार करके खार छाटे उसका एक आम का कोना भी लाल नहीं होगा,
लाल नहीं होगा,
मैंने खोद के एक लकीर नहीं हो गई इनके मुखाकृति पे, इतनी मंद कषाय की शांति हो गई। लेकिन हो सकता है कि अभी भी होए, अभी भी हो सकता है, समझे दर्शन धर्म की शुरुआत नहीं हुई
कोई भग भी हो तो क्या सक्षम में चुना और क्या तो
वो खत्म बात है। तो पात्रता को इन दोनों से अलग चीज है ये कहने का अभिप्राय है
बराबर है,
पात्रता को दूसरी चीज है ये कहने का अभिप्राय।
धर्म प्रकट नहीं हो रहा है, धर्म प्रकट नहीं हो रहा है, इसका सीधा साधा अर्थ ये अगर पात्रता
धर्म पहले के प्रकट होने से पहले होती है, जो होती है उसको होती है ऐसा कहने में आता है, नहीं होती है उसको नहीं हुई या नहीं हुई ऐसा कहने में आता है, बहुत से इनके लक्षण है इसमें लिया है उसको था। एक बीजू का शोध मा दूसरा कुछ मत खोज, एक छोटा सा किताबों के प्रकट होने वाला है हमारे यहाँ से मित्रा प्रश्न है, उसमें पात्रता का विषय चर्चा किया है, इसके उद्धव बात में इसकी चर्चा किया है।
मेरा प्रश्न तो यह है कि धर्म प्रगत नहीं हो रहा है तो इसका सीधा अर्थ यह है कि उस मात्रा में पात्रता
जिस इस पात्रता में जीव आया नहीं, धर्म के होने लायक पूर्व भूमिका में जीव का प्रवेश नहीं हुआ, पात्रता नहीं हुई तो धर्म नहीं होता है। फिर बाह्य क्रिया कितनी भी करे, कितने साल तक करे, कितनी भी करे और कितने साल कितने समय तक करे, इससे कोई संबंध नहीं है,
इससे धर्म प्राप्त नहीं होगा।
और पात्रता वाला बहुत अल्पकाल में, कल क्या बोला, 6 महीना 6 महीने में हो सकता है, अनंत अनंत काल का अज्ञान मिथ्यात्व का संस्कार उसका नाश 6 महीने में हो सकता है, लेकिन जीव प्रयत्न नहीं करता, पात्रता में नहीं आता, प्रयत्न नहीं करता, बस सीधी बात, पुरुषार्थ नहीं करता, यही बात है। उसका एक यहां लक्षण दिखलाया कि जिसको भाव का थाक लगा हो, ये बहुत से इनके चिन्ह हैं, बहुत से लक्षण हैं, उनमें से एक लक्षण ये है कि जिसको भव का थाक लगा हो, जन्म मरण का त्रास हो गया हो, अभी मेरे जन्म मरण नहीं हो, अंतर से इतना त्रासित हो गया हो, त्राहिमान हो गया हो, अभी किसी कीमत पे कोई भी भोग देना पड़े मैं तैयार हूं, तो मेरा जन्म मरण अब मुझे मंजूर नहीं है, ऐसा कोई थाम लगा हो और उसी अवस्था में उसको आत्मा कैसा है ऐसे समझने की सच्ची जिज्ञासा, अपूर्व जिज्ञासा अंतर में जागृत हुई हो, उनको साचा मैंने सम्यक ज्ञानी गुरु मिले ही मिले, मिले ही
मिले,
मिले उनको नहीं मिले ऐसा देशना लब्धि का ये निमित्त है, अनादि मिथ्या दृष्टि को सम्यक ज्ञानी की देशना मिले बिना कभी उनको अपना स्वरूप का लक्ष्य पहचान ज्ञान होता नहीं, बोध होता नहीं, ये एक सिद्धांत है, अनादि अनंत सिद्धांत है।
नहीं,
द्रविंद मुनि का प्रवचन प्रवचन सार में तो मना की है कि बाहर में द्रविलिंग साफ दिखे, पंच महाव्रत 28 मूलगुण अनुद्देशिक आहार वगैरह इसमें आ जाते हैं मूलगुण में, ऐसा साफ दिखे निरतिचार तो नवदा भक्ति से उसको आहार देना, फिर उसका परिचय करना कि द्रविलिंग ये है या भावलिंग, फिर उसका बोध लेना, सत्संग करना, सत्संग करने के पहले उसकी परीक्षा करना,
बरोबर
ये बात किया बिना परीक्षा। और वहां तक मूलाचार्य ने कहा कुंदाचार्य कि तू स्मीर दृष्टि हो, तुझे सत्संग चाहिए तो ऐसे भावलिंगी का कभी सत्संग नहीं मिले तो द्रविलिंगी के सत्संग में कभी मत जाना, अकेला रहने में तुझे ठीक नहीं पड़ता हो तो शादी कर लेना। क्या बोला?
शादी का विवाह कर
लेना। क्या बोले?
शादी कर लेना।
जिस कुंकुंड आचार्य को भावलिंगी संत को नवबाढ़ विशुद्ध ब्रह्मचर्य का महाव्रत है, पूर्ण सही है ना? वो ऐसे कहते हैं कि गृहस्थी का उपदेश नहीं है, इसका मतलब बहुत गंभीर है कि कुसंग से जीव को इतना नुकसान होता है, उतना नुकसान होता है कि इनकी मिथ्या श्रद्धा तगड़ी हो जाती है, सम्यक दृष्टि होता है तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। क्या कितना बड़ा नुकसान? सम्यक दृष्टि कुसंग में जाए, मिथ्या दृष्टि हो जाए, मुनि होने तो गिर जा पड़ जा तो सवाल ही नहीं रहा उसको तो बेचारे को, तो अभी तो बच्चा है वो तो चलने को भी सीखता है, मुमुक्ष तो बालक है मोक्ष मार्ग का, अभी पात्रता का किसी को ठिकाना नहीं, वो कुसंग करे वो तो मर ही जाता है, तो उतना एक भयंकर बात है इसी से, इसलिए ये बात बताई। तो यहां ये बात करते हैं कि जिसको भव का थाक लगा हो, किसको सम्यक दर्शन होता है या सम्यक दर्शन के अधिकारी कौन होते हैं, कि वो जीव अधिकारी होते हैं कि जिसको अपने अनंत जन्म मरण और परिभ्रमण के दुख के विषय में अपने आत्मा की दया आई हो, करुणा आई हो, अरे अरे मर गया मैं, बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ, अब मेरे आत्मा को दुख नहीं देना है, अब मुझे दुख का कोई कारण नहीं सेवन करना है, ऐसे जिसको स्वेदया अंतर में हुई ऐसा जीव संगीत दर्शन के अधिकारी हैं। इससे मैं दिल लिया है ये बात, बहुत अच्छे शब्द में लिया है ना। जन्म मरण करी चुकेला आ आत्मानी करुणा एवा अधिकारी ने उत्पन्न थाय छे, अने तेज कर्म मुक्त थवानो जिज्ञासु अथवा पात्र कही शकाय छे। तेज पुरुष एवो पात्र जीव यथार्थ पदार्थ ने यथार्थ स्वरूपे समझी मुक्त थवाना पुरुषार्थमां योजाय छे, जोड़ाय छे। इतना एक टुकड़ा रख दिया है, 40 नंबर का पत्र है, 21 नंबर यहाँ ये बात लिया है, पत्र पात्रता का विषय था, 52-53 दोनों बोर्ड पात्रता का विषय था।
देवादिदेव सिमंदर भगवान नो जय हो परम कृपाणु श्री कान गुरुदेव नो जय विद्रा दिगंबर।